आप हैं SBS हिंदी के साथ।
शाम 5 बजे तक के मुख्य समाचार। ज्वालामुखी विस्फोट की घटना के बाद व्हाइट आइलैंड से जल्द शव निकालेगा न्यूजीलैंड प्रशासन। भारत में नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा में भी पारित, पूर्वोत्तर राज्यों में तीखा विरोध। और भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को हराकर 2-1 से जीती T20 सीरीज। और अब समाचार विस्तार से। वाकटन अस्पताल के कर्मचारियों का कहना है कि व्हाइट आइलैंड में ज्वालामुखी फटने की वजह से इस घटना के बाद इतनी संख्या में अस्पताल में आने वाले घायलों की जो संख्या थी वो उनकी समझ से परे है। इस घटना में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें कुछ ऑस्ट्रेलियाई नागरिक भी शामिल हैं। सोमवार को हुए इस हादसे में दर्जनों लोग जलने की वजह से घायल हुए हैं। अस्पताल के कर्मचारियों ने अपने अनुभवों के बारे में बताया कि हालांकि उन्हें किसी भी आपदा के समय अपनी सेवाएं देने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, लेकिन उन्हें इस घटना की व्यापकता का अंदाज़ा नहीं था। रजिस्टर्ड नर्स और अस्पताल के समन्वयक डेविड वेन कहते हैं कि सभी कर्मचारियों ने तत्परता से काम किया है।
The compassion shown by our team when faced with this catastrophe was always there and still is. For many of us, it feels surreal. Everyone deals with tragic events in their own way, and many of us are still coming to terms with what happened. Our thoughts are with the victims who remain in hospital, those that sadly didn't survive, and their families and their friends.
न्यूजीलैंड प्रशासन ने कहा है कि उन्होंने शुक्रवार को वाहकारी के व्हाइट आइलैंड से शवों को निकालने की योजना बनाई है। इसके बारे में आज वो परिवारों को जानकारी देंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय से डॉक्टर एशली ब्लूमफील्ड ने बताया कि न्यूजीलैंड में करीब 21 मरीज अभी भी बर्न यूनिट में अलग अलग जगहों पर रखे गए हैं, जबकि 7 ऑस्ट्रेलियाई नागरिक अपने घर वापस लौट गए हैं।
Our intensive care and burns teams throughout all of the burns units continue to work around the clock, putting in huge hours and showing, as we know they do, an unbelievable commitment to ensuring the very best care for patients.
नॉर्दर्न टेरिटरी के एक पुलिस अधिकारी को एक आदिवासी शख्स की हत्या के आरोप में आज अदालत में पेश किया गया। अदालत को बताया गया कि इस साल नवंबर में घटना के वक्त कांस्टेबल जेचरी रॉल्फ 19 साल के कुमुंजई वॉकर को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे थे। आरोप है कि एलिस स्प्रिंग के बाहरी इलाके में हुई इस घटना में किशोर ने पुलिस अधिकारी पर चाकू से वार किया था, जिसके बाद पुलिस ने इसे गोली मार दी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जो कि ऐसे शैक्षणिक संस्थानों की सरकारी मदद रोकता है जो कि यहूदी विरोधी भावनाओं को अनुमति देते हैं। तर्क है कि इस आदेश का मसौदा कॉलेज और विश्वविद्यालयों के कैंपस में छात्रों और दूसरे लोगों को भेदभाव में बचाने में सहायक होगा। हालांकि एंटी डिफेमेशन लीग ने इस आदेश का समर्थन किया है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि यह आदेश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। एक साल से भी कम समय में इजराइल तीसरे राष्ट्रीय चुनाव की ओर बढ़ रहा है। इन चुनावों में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक आपराधिक अभियोग के खतरे के बीच अपने राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए उतर रहे हैं। इससे पहले हुए चुनाव सितंबर महीने में हुए थे, लेकिन इसके बाद से वहां पर कोई सरकार नहीं बन पा रही थी। यही वजह है कि 3 महीनों में ही ये दूसरा चुनाव होने जा रहा है। देश की 2 बड़ी पार्टियों के बीच हुए एक समझौते के मुताबिक अगला चुनाव अगले साल 2 मार्च को होगा। श्री नेतन्याहू पर रिश्वतखोरी और विश्वास भंग करने के आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है। और अब खबरें भारत से। भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा के बाद विवादित नागरिक संशोधन बिल कल संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में भी पास हो गया। इस बिल के पक्ष में 125 जबकि इसके खिलाफ 105 मत पड़े। इस बिल में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। महज मुस्लिम समुदाय को इससे बाहर रखा गया है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र के वादे को पूरा किया है और वो मानते हैं कि उनके इस वादे के लिए उन्हें जनता ने बहुमत दिया था। उन्होंने राज्यसभा में सवाल उठाया कि क्या पूरे विश्व से आने वाले मुसलमानों को देश की नागरिकता दे दें?
क्या आप चाहते हो कि पाकिस्तान से भी जो मुसलमान यहाँ आए इसको भी हम नागरिक बना दें, बांग्लादेश से जो मुसलमान आए इसको भी नागरिक बना दें, अफगानिस्तान से भी जो मुसलमान आए वो नागरिक बना दें? तो क्या कहना चाहते हो? पूरी दुनिया में से जो भी मुसलमान आएगा इसको हम यहाँ नागरिकता दे देंगे? किस तरह से देंगे? देश कैसे चलेगा?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बुधवार के दिन को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने इसे भारतीय इतिहास में मील का पत्थर बताया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसे भारत के संवैधानिक इतिहास का काला दिन करार दिया। उन्होंने कहा कि ये उस भारत के सोच को चुनौती देता है जिसके लिए राष्ट्र निर्माता लड़े थे। कांग्रेस पार्टी सहित पूरे विपक्ष ने राज्यसभा में भी इस बिल का विरोध किया। कांग्रेस की ओर से गृहमंत्री के विपक्ष पर आरोपों का जवाब दिया गया। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का विरोध राजनीतिक नहीं बल्कि कांग्रेस इस बिल को संविधान के मूल भावना के खिलाफ मानती है।
आपने कहा यह ऐतिहासिक बिल है, पर इतिहास इसको किस दृष्टि से देखेगा वो वक्त बताएगा। अगर बदलाव लाए थे आपने, बेहतर होता। प्रजातंत्र की ये रिवायत है, इसको दोबारा दिखवाते? जल्दबाजी क्यों? विरोध के कारण राजनीतिक नहीं, संवैधानिक, नैतिक है। आई एम कन्विंस्ड दैट द बिल दैट यू हैव ब्रॉट इज एन असॉल्ट ऑन द वेरी फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
उधर गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि देश में अगर कोई पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है तो वो बीजेपी की सरकार है।
उनके आइडिया था कि वो एक किस्म के देश बनाए जहाँ एक मात्र मजहब को प्रधानिक स्थान में रखा जाए। तो अगर भारत में बीजेपी ऐसा करना चाहते हैं तो अगर पाकिस्तान की भाषा कोई भी कह रहा है ये तो भाजपा सरकार है और हम नहीं।
इस बीच असम में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं और कुछ इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया गया है। कई जगह कर्फ्यू के उल्लंघन की भी खबरें हैं। इलाकों में सेना ने फ्लैग मार्च भी किया है। अलग अलग जगहों से आगजनी की भी खबरें हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में विरोध की खबरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए वहां के लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि कोई उनके अधिकार, अनूठी पहचान और खूबसूरत संस्कृति नहीं छीन सकता। झारखंड में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। इस चरण में गैर आदिवासी 17 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। आज करीब 56 लाख से ज़्यादा मतदाता 309 उम्मीदवारों में से अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। इन 17 सीटों के लिए कुल 7016 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस चरण में रांची से शहरी विकास मंत्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, कोडरमा से मानव संसाधन विकास मंत्री नीरा यादव और धनवार सीट से झारखंड विकास मोर्चा के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। और अब डॉलर का हाल। आज यानी गुरुवार को यह खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपये में कीमत 48.61 रुपये और अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 68 सेंट्स थी। खबरें खेल के मैदान से। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए सीरीज के आखिरी T20 मैच में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 67 रनों से मात दी है। इसी के साथ 3 मैचों की सीरीज भी 2-1 से भारत ने अपने नाम कर ली। टॉस वेस्टइंडीज के कप्तान केरन पोलार्ड ने जीता था। भारत को बल्लेबाजी का न्यौता उन्होंने दिया। पोलार्ड के इस फैसले को लोकेश राहुल के 91 रन, रोहित शर्मा के 71 रनों ने गलत साबित कर दिया। इसके बाद कप्तान विराट कोहली के नाबाद 70 रनों ने वेस्टइंडीज के हाथों से ये मैच करीब करीब छीन लिया था। भारत ने 20 ओवर में 240 रन बनाए। वहीं वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में महज 173 रन ही बना सकी। पीवी संधू की हार के साथ बैडमिंटन के वर्ल्ड टूर में भारत की चुनौती खत्म हो गई है। पहला गेम जीतकर अच्छी शुरुआत करने वाली सिंधु जापान की खिलाड़ी अकाने यामागुची से 18-21, 21-18 और 21-8 से हार गई। हालांकि दोनों के बीच हुए कुल मुकाबलों में सिंधु अभी 10-7 से आगे हैं। इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सिंधु अकेली भारतीय खिलाड़ी थी। और अब डालते हैं नज़र कल यानी शुक्रवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। शुरुआत पर्थ से। पर्थ में शुक्रवार को भी तेज गर्मी जारी रहने के आसार हैं। तेज धूप के बीच यहां अधिकतम तापमान 41 डिग्री जबकि न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 23 डिग्री जबकि न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न में ज्यादातर बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 21 डिग्री न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। देश की राजधानी कैनबरा में धुआं छाए रहने की अनुमान है। यहां पर अधिकतम तापमान 28 डिग्री जबकि न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। सिडनी में बादल छाए रहने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 23 डिग्री न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। ब्रिस्बेन में तूफान के बीच छिटपुट बारिश के आसार हैं। अधिकतम तापमान 29 डिग्री न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। डार्विन में भी तूफान और हल्की बारिश के आसार हैं। अधिकतम तापमान 35 डिग्री न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। भारत की राजधानी नई दिल्ली में सुबह के वक्त बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अधिकतम तापमान 18 डिग्री जबकि न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचारों में आज इतना ही।
आपके विचार हमें बताएं। SBS हिंदी को फेसबुक पर लाइक करें और @SBS हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें।